हरे कृष्णा, गुरुदेव की जय हो। अभी इस पावन बेला पर हम चरण पहाड़ी इस सुंदर स्थान में बैठे हुए हैं, काम में वन में। आप लोगों को चढ़ने में कष्ट हुआ क्या?
नहीं।
थोड़ा बहुत कष्ट होगा तो अच्छा ही है, क्योंकि भगवान के जो पवित्र स्थान है वो कुछ वनों में है, उसका रास्ता कीचड़ से गुजरता है, या कुछ पहाड़ पर है जहाँ पर शरण चिन्ह है। ऐसे सुंदर सुंदर स्थान जो है पूरे ब्रज में छाए हुए हैं। इतना सुंदर स्थान है, यहाँ का दृश्य देखो कितना रमणीक है। चारों ओर हरियाली, खेत, पहाड़, इतना सुंदर दृश्य है, इसका पूरा आनंद लो। और कुछ लोगों ने यहाँ पर सीढ़ियाँ बना के रखी हैं, पहले तो सीढ़ियाँ भी नहीं थी, ऐसे चढ़ के आते थे, अभी तो बीच में भी सीढ़ी लगा दी है आसान करने के लिए। हाँ, ये सब इसी भाव से किया हुआ है कि लोग यहाँ आ सके और इस स्थान का आनंद ले सके। हम लोग 200 साल पहले यहाँ पर आए थे महाराज जी के साथ में, तभी कुछ टाइलिंग वाली नहीं था, ओरिजिनल पत्थर था पूरा, सब कवर कर दिया उसको पूरा। पहले खुला था पत्थर, बहुत सुंदर था, अभी टाइल में ढक दिया पूरा उसको। हरे कृष्णा। तो चरण पहाड़ी ये काम्य वन में है, ये पहाड़ भी शिव जी का स्वरूप है, और यहाँ पर भगवान ने बांसुरी बजाई है। भगवान की बांसुरी जो है वो बहुत ही विशेष है, वंशी प्रिय सखी, ऐसे ब्रह्मा जी उसका वर्णन करते हैं। जो वंशी है वो भगवान की बड़ी प्रिय सखी है, और कभी भी भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते। सब गोपियां जो हैं उनका भाग्य का वर्णन करते हैं, भाग्य के बारे में सोचते हैं, कितना भाग्य है इसका। हाँ, हमको भगवान को मिलने के लिए कितना योजना बनाना पड़ता है, छुप छुप के मिलना पड़ता है, कोई देख ना रहा हो, लेकिन ये बंसी जो है हमेशा भगवान के होंठों से लगी रहती है, कॉन्स्टेंट भगवान का जो अधरामृत, मतलब जो होठों का अमृत है, उसको हमेशा पान करते रहते। भगवान भी उसमें से अपने मुंह से सुंदर सुंदर स्वर निकालते हैं, पूरे विश्व को मोहित कर देते हैं। पूरे विश्व को मोहित कर देते हैं। ये बंसी का वर्णन इतना सुंदर आया है कि भगवान जब बंसी बजाते हैं, खास करके इसका वर्णन गर्ग संहिता में आता है, जब उन्होंने यहाँ बंसी बजाई है तो उसका स्वर जो है वो पूरे ब्रह्मांड के कवरिंग को काट कर विरजा नदी को पार करके, पहले वो सभी स्वर्ग लोकों को भी पार करके यहाँ से पृथ्वी से निकल के स्वर्ग लोकों में गया, स्वर पाताल में गया। स्वर्ग लोक में देवता लोग भ्रमित हो गए, इंद्र आदि, चंद्र, सूर्य, वरुण, जितने भी देवता हैं जो अपने अपने लोक में बैठे हुए हैं वो सब मोहित हो गए, अचंभित हो गए, स्तंभित हो गए, अपने स्थान में स्थिर हो गए, ऐसे ही जैसे कि चित्रपट हो, पेंटिंग जैसा हो। ब्रह्मा जी जो है वो अपने ध्यान को भूल गए और ऐसे ही स्टंड हो गए। ब्रह्मलोक को पार करके वो क्षीर सागर में गया, यह आवाज बंसी का। वहां पर गर्भोदकशायी विराजमान है विष्णु जी, लक्ष्मी जी, वो दोनों भी स्तंभित हो गए, और जो नाग था वैसे डोलने लगा अनंत शेष बंसी के स्वर पे। फिर वो ब्रह्मांड के कवच को भेद कर बिरजा नदी को पार करके वैकुंठ में गया, और वैकुंठ में जो अलग अलग विष्णु के स्वरूप हैं और वैकुंठवासी जो लोग हैं वो सब स्तंभित हो गए। वो जो भगवान के धाम में है वो सब लोग, लेकिन सब भगवान की बंसुरी का आवाज सुन के वहां पर भी वो स्तंभित हो गए। फिर वो स्थान वहां से गौलोक वृंदावन गया है, वहां जो गोपियां हैं वो भी स्तंभित हो गई हैं इसको आवाज सुन के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ध्वनि है बंसी की, ये दिव्य ध्वनि है, इट्स ट्रांसेंडेंटल साउंड। वो सभी जो ब्रह्मांड के कवरिंग्स है वो मटेरियल है, इट्स अ मटेरियल अरेंजमेंट, वो सबको पार करते हुए आवाज चीरते हुए सारे ब्रह्मांड के अंतिम स्थान तक पहुंच जाती है। फिर क्षीर सागर के आगे जाकर वो कारण सागर में पहुंचते हैं जहाँ महाविष्णु विराजमान है। महाविष्णु ऐसे ही लेटे हैं, उनके पास कोई शेर शैया नहीं है। महाविष्णु निद्रा से जागते हैं और स्तंभित हो जाती, उसके बाद में गिरजा, उसके बाद में वैकुंठ, उसके बाद में गौलोक तक ये ध्वनि पहुंची हुई है। इतना अनोखा ये ध्वनि है बंसी का, और ये बंसी के ध्वनि से भगवान कई काम कर लेते हैं। जैसे हमने कल आपको बताया टेर कदम पे, बंसी से सब गायों को बुलाते हैं। बंसी ऐसा अनोखा साधन है उनका, जिससे वो कई प्रकार के काम कर लेते हैं। तो उनकी तीन प्रकार की बंसुरियां हैं, मतलब तीन प्रकार के उसमें, एक होता है वेणु, दूसरा होता है वंशी यानी बंसी बंसुरी, और तीसरी होती है मुरली। हाँ, ये तीनों एक का नाम नहीं है, तीन अलग अलग चीज़ें हैं। जो वेणु होता है होती है वो 6 इंच की होती है, और उसमें 6 छेद होते हैं, 6 होल्स। जो बंसी होती है वो 15 इंच की होती है, उसके अंदर 9 छेद होते हैं। और जो मुरली होती है वो 18 इंच होती है, उसके अंदर लास्ट में 1 छेद होता है और बीच में 4 छेद होते हैं, 4 बीच शरीर पे होते हैं और एंड में 1 होता है, 5। और ये संगमरमर से बनी होती है वेणु, वंशी जो है सोने की बनी होती है स्वर्ण की, और मुरली जो है वो बांस की बनी होती है। कुछ लोग कहते हैं वंशी और बांस, बांस से बनी वंशी है और मुरली स्वर्ण से बनी हुई है। एनीवे, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, कभी किसी को स्वर्ण के बना देंगे, कभी किसी को बंसी की बांसुरी बांस की बना दें, लेकिन कार्य तो वही करती हो, भगवान के अधरामृत को छूकर दिव्य ध्वनि उत्पन्न करके सबके हृदय को मोहित कर लेती है। ऐसे उसका वर्णन आया है कि इन तीनों जो वाद्य है भगवान के, वो इंद्र नील मणि, मतलब कैसे कहें आपको, इट्स लाइक ब्लू सैफायर, उससे सुशोभित है। और इसके अंत में रूबीज है, रूबीज का मतलब क्या है, पाचू, इज दैट राइट, पाचू कहते हैं ना रूबी को, और सोने का बना हुआ है, बीच में स्वरत्न लगे हुए हैं। और उज्जवल नीलमणि में ये जो शास्त्र है, रूप गोस्वामी ने वहां पर लिखा था टेर कदम पे, उज्जवल नीलमणि कौन है वो, उज्जवल नीलमणि, हाँ, दैट एफलजेंट ब्लू ब्लू पर्ल, कौन है वो, श्री कृष्ण भगवान। उज्जवल नीलमणि श्री कृष्ण का वर्णन है। उसमें विशाखा देवी राधा से कहती है कि जब ये मुरली भगवान के होठों से दांतों को स्पर्श करती है तो ये स्फटिक जैसे नजर आती है, स्फटिक होता है ना क्रिस्टल, इट्स लाइक ए क्रिस्टल। जब ये मुरली उनके सुंदर लाल रंग के हथेले को स्पर्श करती है तो वो लाल रंग का क्या होता है, पाचू ना, रूबी, रूबी, तो वो रूबी से बनी हुई डंडी नजर आती है। और जब ये बजते हुए भगवान के गाल को भी स्पर्श करती है तो गाल का रंग कौन सा है, नीला है ना, भगवान नीले रंग के ना, हाँ, लाल रंग के उनके हथेली है पाम्स, और दांत स्फटिक की तरह है, और गाल जो है वो नीले रंग का है, तो सैफायर यानी कि नीलमणि नजर आता है। तो विशाखा देवी कहती है कि तीन प्रकार के रत्नों की तरह ये मुरली नजर आ रही है जो भगवान के होठों को छू के विराजमान है। और भगवान के मुरली के 8 स्वर हैं, 8 प्रकार के स्वर निकलते हैं उसमें से। जो पहला धन धुन धुन कह सकते हैं उसको, स्वर कह सकते हैं, तान कह सकते हैं, या उसके ट्यून कह सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वैसे, लेकिन 8 प्रकार के ध्वनि निकलते हैं उसमें। जब पहला ध्वनि निकलता है तो क्या होता है, ब्रह्मा जी और शंकर जी इनका ध्यान टूट जाता है, जो ध्यान में बैठे ना भगवान का ध्यान कर रहे हो, ध्यान भी भंग हो जाता है, सब कुछ भूल जाते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं और उनको समझ में आता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे मोहित हो जाते हैं। और वो संगीत शास्त्र में बहुत एक्सपर्ट हैं वो, शिव जी महाराज सब लोग, लेकिन फिर भी ये कौन सा राग है और कौन सा ट्यून है समझ में नहीं आता उनको। सोचते रहते क्या होगा ये, कौन से राग में बना होगा ये। ये भगवान का जो मुरली का साइंस है ये सभी दुनिया के संगीत शास्त्र से परे हैं। और शिव जी जो हमने डमरू बजाना बंद कर देते हैं, और स्वर्ग में इंद्र जो है रोने लगते हैं, उनके आंसू स्वर्ग से वृंदावन धाम में गिरने लगते हैं, और ब्रह्मा जी अपने कमल दल में कमल में बैठे बैठकर आश्चर्य में विचार अलम क्या कहते हैं अचंभित रहते हैं, और अनंत शेष जो है, मैंने कहा ना ऐसे डोलते हैं, झूलते हैं बंसी की तान पर। जब दूसरा धुन बजाते हैं उसके ऊपर, तो यमुना जी रुक जाती है और पीछे चलने लगती है, उल्टा दिशा उल्टी हो जाती है उसकी। और तीसरे जब धुन बजाते हैं तो सूर्य और चंद्र अपनी कक्षा में रुक जाते हैं और उल्टी दिशा में घूमने लगते हैं, दे स्टार्ट गोइंग बैकवर्ड्स। चौथी धुन में क्या शक्ति है, चौथी धुन बजाते हुए सब गायें जो हैं वो जहां पर खड़ी है वही खड़ी हो जाती है, उनके कान खड़े हो जाते हैं, पूंछ खड़ी हो जाती है, आंख ऐसे बड़ी बड़ी हो जाती है और वो चित्रपट की तरह एकदम स्थिर हो जाती है। दे बिकम स्टंड लिसनिंग टू साउंड ऑफ कृष्णा, गर्दन उठाकर ऐसे ना ना पंखुड़ी ना आंख मिचती है ना हिलती है ना कुछ नहीं, ऐसे स्टंड हो जाती है चित्रपट की तरह। और भगवान के दिव्य मुरली के द्वारा निकले हुए अमृतमणि अमृतमयी स्वर से अपने कानों को तृप्त करते रहते हैं। जब पांचवें धुन बजाते हैं तो क्या होता है, गोपियां पागल हो जाती है। पांचवी धुन ऐसी धुन है कि पांचवा स्वर बजाते ही जहां जहां गोपियां कुछ जो भी कुछ कर रही हैं वो सब करना छोड़ देती है। जैसे कोई गाय का दूध निकाल रही है, कोई गोबर के कंडे बना रही है, कोई रसोई बना रही है, कोई रोटी बना रही है, कोई बच्चे को दूध पिला रही है, कोई बच्चे को नहला रही है, कोई सासू के चरण दबा रही है, कोई घर में झाड़ू लगा रही है, कोई आंगन में कुछ कर रही है, कुछ भी कर रहे हैं, जमुना में मटका भर रही है, मटका लेके घर आ रहे हैं, सब काम उधर ही छोड़ देते हैं। कोई श्रृंगार कर रहे हैं, होता है ना, कोई बाल बना रहे होंगे, कोई मेकअप करते होंगे। तो खास करते हुए मेकअप करने वाले को ऐसा बताया है गोपियों को कि वो काजल जो है वो हाथ पे लगा देते हैं और वो है ना महावर आलता वो आंखों में लगा देते हैं। हाँ, महावर इज आलता, द डेकोरेशन ऑफ द लोटस ऑफ द फीट, आंख में लगा देते हैं। और आंख का डेकोरेशन जो है मस्करा और काजल जो है पांव में लगा देते हैं। और जो नीचे पहनने का वस्त्र है लहंगा ऊपर पहनते हैं, ऊपर का जो फरिया है वो नीचे पहनते हैं। इस प्रकार के अजीब काम करते हैं, एक आंख में काजल लगाते, एक आंख में काजल नहीं लगाते, ऐसे कुछ भी करते हैं, एक आंख में कुंडल पहनते हैं, एक में छोड़ देते हैं। वो समझ में नहीं आता उनको, मतलब ऐसा इतनी उनकी बुद्धि जो है ना वो भ्रष्ट हो जाती है इतना सुनकर कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और क्या सही है और क्या गलत, उसका भाव नहीं भूल जाते हैं कंप्लीटली। एक मोह होता है शराबी का, वो शराब पी के सब भूल जाता है क्या है, वो सोचता मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, गटर में गिरा हूँ। ये माया का भ्रम है। और एक भ्रम है मुरली का जो दिव्य भ्रम है जिससे अपने अस्तित्व को गोपियां भूल जाती हैं, पूरा उल्टा कार्य करने लगती है। और कुछ कुछ गोपियां जो है माता है, पत्नी किसी की है, किसी की बहू है, किसी की सिस्टर है, किसी का जो भी कुछ है, सब सब रिश्तों को छोड़कर वो पागलों की तरह जंगल में भागने लगती है जहां पर मुरली की आवाज आ रही है, जहां से वो ध्वनि आ रही है वहां से वो भागने लगती है उसी दिशा में। फिर बीच रात में हो या दिन में हो या संध्या के समय पे हो सुबह के समय पे हो, कोई भान रहता नहीं उनको, ना भय रहता है ना लज्जा आती है उनको, एकदम अपने आप के ऊपर का नियंत्रण खो जाती है वो। कामातुराणाम न भयम न लज्जा ऐसे कहा गया है। लेकिन गोपियों का जो काम वासना है ये हमारे जैसा काम वासना नहीं है उनका, वो भगवान के लिए है। वो भी ऐसी वासना नहीं है कि जो शरीर के भोग के लिए वो चाहते हैं, भगवान को तुष्ट करने के लिए जो उनकी इच्छा है वो दिव्य काम है। वो हमारे जैसा काम नहीं है जो हम सोचते हैं कि औरत आदमी साथ में आते हैं एक दूसरे को देख के पागल हो जाते हैं, वो काम भावना नहीं है। ये दिव्य और शुद्ध प्रेम भावना है। उसके वश बंसी की तान सुनकर जब भगवान उनको पुकारते हैं बीच रात में, तो जंगल में कितने खूंखार जानवर होंगे, कितने प्राणी होंगे, कितने सर्प होंगे, कितने क्या क्या होंगे, कितने संकट होगा, पत्थर कंकड़ क्या क्या हो सकता है, किसी की हिम्मत नहीं होती रात को जंगल में जाने की। ऐसे अवस्था में प्रेम के वश न भयम न लज्जा, भय भी उनका खत्म हो जाता है और भागते हैं जंगल के अंदर बिना। और लज्जा कैसे, लज्जा मतलब मर्यादा है ना, कि मैं किसी की बहू हूं, किसी की माँ हूं, किसी का कुछ हूं, पर्दा रखती हैं, सब कुछ छोड़ देती है, भाग जाती है। उनको पता ही चलता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली, ये सोचती नहीं कि मैं अभी लज्जा छोड़ने वाली हूं, अब मैं भय को त्यागने वाली हूं, ऐसा नहीं है, वो अपने आप स्वतः हो जाता है सब कुछ। तो पांचवी धुन का जो महिमा है, पांचवी धुन का जो परिणाम है, वो पूरे भागवत में उसका गौरव किया है। राजा रानी को क्या हुआ, ललिता विशाखा आदि गोपियों की क्या अवस्था हुई, बीच रात में ऐसा हुआ कि वो सब कुछ छोड़कर, मैं रोटी तवे पर रखी है, गाय को दूध निकाल रहे हैं, बच्चे को स्तन पे रखा है, किसी के चरण दबा रहे हैं, ऐसी अवस्था में ऐसे हवा का झोंके तरह निकल जाती हूँ। और फिर उसके पति आते हैं, कुछ लोग, कुछ गोपियों के पति लोग आते हैं, उनको रोकते हैं जाने के लिए, रोकने को मना, जाने को मना कर देते हैं। तो क्या होता ना, खिंचातानी होती है उनके अंदर, थोड़ा सा इधर आ जाओ। और कुछ लोग यशस्वी होते हैं विभाग निकलने में, कुछ लोग यशस्वी नहीं होते हैं, तो उनको गोपियों को उनके पति जो है घर में बंद कर देते, कमरे में बंद कर देते हैं। और कुछ लोग झपटा झपटी करके भाग जाते हैं जंगल में। और जो गोपियां इस ध्वनि को सुनकर, उनको कैद किया जाता है घर के अंदर, लॉक किया जाता है, वो प्राण छोड़ देती है और आत्मस्वरूप में भगवान को मिलने जाती है। शरीर का बंधन है, शरीर को लॉक कर दिया है, शरीर को छोड़ देते हैं। कितना प्रेम है देखो आप उनके अंदर, तत्क्षण शरीर को छोड़ देते हैं और आत्मा उनकी बाहर निकल के भगवान के पास मिलने जाती है। इतनी शक्ति है बंसी की आवाज में। मतलब क्या हुआ, सारे लौकिक बंधनों को तोड़कर, जो भी बंधन है, इस शरीर का है, रिश्ते का है, नाते का है, धन का है, जो भी घर के कर्तव्य का है, सब कुछ, मर्यादा है, इज्जत है, सब कुछ छोड़ देते हैं और भगवान को पूर्णता समर्पित होने के लिए बीच रात में, समय भी गलत है, भय भी है उसके अंदर, सब कुछ त्याग करके भाग जाते हैं। क्या उद्देश्य है उनका, भगवान को संतुष्ट करना। भगवान बुला रहे हैं सेवा के लिए, पुकार रहे हैं, उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, प्रतिसाद दे रहे हैं। ये पांचवें धुन की महिमा है। छठे धुन का दो परिणाम होते हैं जो यहां के लिए रेलेवेंट है बहुत। छठवां धुन बजाते हुए पत्थर पिघलने लगते हैं, और जो है ना शरद ऋतु, जो बहुत प्रसन्न ऋतु होता है, जब भगवान को रास करने का मन होता है, रास करने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है, जिसमें सुंदर पुष्प होते हैं, फल होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, सुंदर खुशबू होती है, हवा का झोंका चलता है, मंद मंद हवा जो मुलायम, शीतल और आनंद देने वाली होती है, ये सब दिव्य वातावरण जो शरद ऋतु का होता है, वो छठवीं धुन बजाने से अपने आप उत्पन्न होता है। अपने आप कोई ऋतु अलग भी होगा, सूखा होगा, उसमें भी ये धुन बजाते हुए तुरंत वासमंत जो है बदली हो जाता है। एक क्षण के अंदर पूरा शरद ऋतु का वातावरण उत्पन्न होता है। और विशेष बात यह है कि इस विश्व में ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जिससे हम पत्थर को पिघला सकें। हम लोहे को पिघला सकते हैं, गोल्ड को पिघला सकते हैं, चांदी को पिघला सकते हैं, हर धातु को हम लोग पिघला सकते हैं, लेकिन पत्थर को पिघलाने का कोई टेक्निक आज तक साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढ के निकाला नहीं है। एक ही तरीका है केवल, जब भगवान पत्थर पर चलते हैं तो पत्थर मुलायम हो जाता है, पिघल जाता है। गोवर्धन, ब्रह्माचल बरसाने का, नंदीश्वर नंदगांव में, यहाँ पर चरण पहाड़ी पे, जहां जहां भगवान चलते हैं, दो कारण से पत्थर पिघलते हैं। एक कारण जो व्यक्ति है ना, वो यहाँ पर शिव जी हैं, वहां पर ब्रह्मा जी हैं, वहां पर विष्णु जी गोवर्धन बने हुए हैं, सब व्यक्ति रूप में भगवान के पत्थर बनकर सेवा कर रहे हैं। वो भगवान के चरण को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए सख्तपन का। सख्त है ना, पहाड़ बहुत सख्त होता है, तो पहाड़ सख्त होता है तो भगवान के चरणों में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए वो स्वयं पिघलते हैं। भगवान को मुलायमता, जो कोमल जैसे चरण कमल है उनके, कमल जैसे, उनको आनंद देने के लिए वो स्वयं पिघल जाते हैं, नंबर वन। और नंबर टू कारण उसका यह है कि भगवान के चरण का स्पर्श होते ही वो पिघल जाते हैं, चरण स्पर्श के प्रभाव से। और जहां जहां चलते हैं, क्योंकि वो पिघल जाता है, वहां वहां उनके चरण चिन्ह भी बन जाते हैं। हा? आप किसी पिघलते हुए मोम पर पांव रखेंगे तो आपका पांव का चिन्ह आएगा ना उसके ऊपर, जब फिर दोबारा मोम सघन हो जाएगा तो उसके चिन्ह बनेंगे उसके ऊपर। उस तरह से जहां जहां भगवान ने खड़े होकर ये छठवीं धुन बजाई है, वहां वहां पत्थर पिघले हुए हैं। मैंने आपको बताया था ना कि सब जगह ब्रज के अंदर भगवान के चरण चिन्हों का ही अलंकार सब जगह फैला हुआ है, और पत्थर पे खास करके। अभी बहुत चिन्ह थे पहले, नष्ट होते जा रहे हैं समय के साथ में, कुछ मेंटेन किए जा रहे हैं, कुछ नष्ट होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे चिन्ह हैं। नंदगांव में है, गोवर्धन में है, यहाँ पर है, छोटी बठेन बड़ी बठेन नाम का गांव वहां पर है, कुछ श्री जी के चरण कमल जो है बरसाने के श्री जी के मंदिर में है, कुछ मोरकुटी में है, हाँ ये हमको दर्शन करने को मिलते हैं। ये बहुत बड़ी ब्रज की हमारे लिए भेंट है, भगवान का चरण कमल, जिसे पूरा विश्व उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वह हमारे लिए दर्शन के लिए उपलब्ध है। सातवां धुन जो है वो बजाते ही क्या होता है, जितने भी छह ऋतु हैं वर्ष भर के, है ना, शिशिर ऋतु है, शरद ऋतु है, हेमंत ऋतु है, वसंत ऋतु है और वर्षा ऋतु है, सभी ऋतुओं का जो बेस्ट वस्तु है वो प्रकट हो जाती है। छह ऋतु एक साथ प्रकट हो जाते हैं अपने अपने विविधता के साथ, एक ही साथ में भगवान को आनंद देने के लिए। क्या भगवान का चाहता है, वर्षा अच्छी लगती है, वर्षा हो रही है, हवा चल रही है, हवा आ रही है, कौन से फूल खिल रहे हैं अच्छे लगते हैं, वो भी फूल खिल रहे हैं, जो जो अपनी ऋतु की खासियत है वो सब खासियत प्रकट हो रही है। और दक्षिण दिशा से बहुत सुंदर वन फूलों का सुगंध लेकर हवा बहती है और भगवान की इंद्रियों को सुख देती है, सातवें धुन को बजाते हुए। और आठवीं धुन जो है वो एकदम स्पेशलाइज्ड धुन है, ओनली फोकस्ड, उसका एक ही उद्देश्य है। आठवीं धुन से वो केवल राधा रानी को पुकारते हैं, केवल राधा रानी के लिए रिजर्व रखा है उन्होंने, एक ट्यून, पूरा ट्यून जो है वो राधा रानी को डेडिकेट किया है उन्होंने। जब वो ट्यून बजता है तो दुनिया में किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, केवल राधा जहां पर भी है वहां पर राधा राधा राधा, श्री जी करुणामयी प्रेममयी वार्षभानवी, ऐसे पुकार सुनाई पड़ती है उनको जहां पर भी है। कभी श्रृंगार कर रही है, कभी गाय का दूध निकाल रही है, रसोई बना रही है, कुछ कर रही है, सेवा कर रही है, जहां पर भी है वो, वहां पर केवल उसको बुलाने के लिए भगवान इस आठवीं धुन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे कहा गया है कि ये जो बहुत ही तीव्र झंझावात है भगवान की मुरली का, ये राधा रानी को भाव विभोर कर देता है और उस झंझावात के प्रभाव में मोहित, प्रभावित, भ्रमित होकर वो महावर अपने आंखों में लगाती है, कंठ का हार जो है वो कमर में पहनती है, घुंघरू और जो नुपुर है वो हाथ में कलाई में पहनती है, लहंगा नीचे पहनती है, लहंगा ऊपर पहनती है और भरिया नीचे पहनती है, और काजल जो है पांव में लगा देती है, और कभी आधा श्रृंगार करके भाग जाती है, कभी काजल लगाना छोड़ देती है, कभी कुछ पहनती नहीं है, कभी एक हाथ में कंगन ही नहीं पहनती, ऐसे भाव विभोर होकर, पागल की तरह भ्रमित होकर, आकर्षित होकर, हवा की तरह गति, हवा की गति से जैसे लोह चुंबक लोहे को खींचता है वैसे हवा की तरह भगवान की ओर खींची जाती है वो, अनियंत्रित होकर, पूर्णता से अनकंट्रोल्ड। हाँ, आई ऑल्सो सेल इन इंग्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ माता जी, द वर्ल्ड विंड, द पैशनेट वर्ल्ड विंड ऑफ द फ्लूट ऑफ द एथ ट्यून ऑफ कृष्णा ओवरवेल्म्स हर एंड लाइक मैड वुमन शी गेट्स सक्ड और शी रन्स टुवर्ड्स द साउंड ऑफ द फ्लूट फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग एंड शी गेट्स कंप्लीटली अनकंट्रोल्ड, शी बिकम्स अनइजी, शी बिकम्स डिस्ट्रेस्ड इन ट्रांसेंडेंटल वे, शी गेट्स पुल्ड एंड अट्रैक्टेड एंड स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स द साउंड फ्रॉम वेयरएवर इट इज कमिंग। सुंदर वर्णन आया है इसका, तो आप देख सकते हैं कि भगवान की मुरली कोई साधारण वस्तु नहीं है। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में 35वें अध्याय में लिखा है कि बैल, हिरन, गाय सब लोग जो है अपना घास जो चबा रहे हैं ना उसको वो चबाना भूल जाते हो ऐसे ही, और मुंह से उनका घास गिर जाता है, आधा मुंह में आधा गिर रहा है, ऐसा खान खड़े हो जाते हैं, चित्रपट की तरह वो स्तब्ध हो जाते हैं और भगवान के मुरली का दिव्य ध्वनि सुनने में मशगूल हो जाते हैं। भक्ति रसामृत संधू में 30वें अध्याय में बताया है कि जो बच रहे हैं गाय के वो दूध पी रहे हैं गाय का, जब मुरली बजती है तो मुंह उधर लगा रहता है गाय के थन पे, लेकिन दूध नहीं पीते वैसे ही दूध पीना छोड़ देते हैं, ऐसे ही खड़े होते हैं उधर ही, मुंह लगा हुआ है लेकिन दूध नहीं पी रहे हैं, और उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं बछड़ों के। ब्रज विलास तव, रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा हुआ ग्रंथ है, जब ये धुन बजती है तो कभी कभी राधा रानी अपनी वीणा निकालती है और वीणा पे उसको साथ देती है और वे द्वंद्व गीत चलता है राधा रानी की वीणा का और भगवान के मुरली का। और सारा आसमंत जो है, सारे ब्रजवासी जो है इसको सुनकर पागल हो जाते हैं. द ड्यूएट ऑफ द साउंड ऑफ वीणा ऑफ राधा रानी एंड द फ्लूट ऑफ कृष्णा. उज्ज्वल नीलमणि में लिखा है कि जब भगवान का मुरली बजती है तो सारे पेड़ों में, वेलियों में, वृक्षों में आनंद उमड़ आता है और वो थरथर कांपते हैं इसे आनंद से, और उसमें फूल आते हैं और फल आते हैं और बाहर आती है. कोयल जो है वो सुंदर गाती है ना, कोयल वो गाना बंद कर देती है जब भगवान की मुरली बजती है. तो मुझे बजने से क्या काम है, इतना सुंदर ध्वनि हो रहा है, क्या जरूरत है मेरे मुझे गाने की, गाना बंद कर देती है. कुहू कुहू का आवाज बंद हो जाता है और स्वयं कोयल जो सुंदर स्वर निकालती है अपने कानों से भगवान की मुरली का ध्वनि सुनने का प्रयास करती है. और जो चंद्रमुखी गोपियां हैं जिनका मुख कमल चंद्र के समान है, ऐसी गोपियों के अंदर भगवान के प्रेम का दीपक जलने लगता है, प्रज्वलित होता है और उनको भगवान को मिलने की आस बढ़ने लगती है. तो भगवान की मुरली का वर्णन सुंदर कोमल हवा के झोंके की तरह किया गया है. ये झोंका जो है, ये जो ऑलरेडी वहां पर जोत जल रही है प्रेम की, उसको और हवा दे रही है और प्रेम और मिलन की आस बढ़ा रही है. तो मुरली का तो वर्णन हवा के झोंके के साथ में किया गया है. उस मुरली का वर्णन वज्र के समान भी किया गया है. इट्स कंपेयर्ड टू ऑल्सो थंडरबोल्ट. क्या करता है वो, तो राधा रानी का मर्यादा है और राधा रानी का मान है और उनका वो अपने आप को बड़े क्या कहते हैं उसको, शी कीप्स हर्सेल्फ वेरी कंपोज्ड ऑलवेज, शी इज वेरी पीसफुल, वेरी वेल मैनर्ड, वेल कंट्रोल्ड. ये उसका मर्यादा का जो पहाड़ है ना, वो भी ये मुरली के वज्र से टूट जाता है. और वो जो चेस्टिटी यानी कि जो उसकी भगवान के प्रति श्रद्धा है वो भी हिल जाती है और सब कुछ नियमों को तोड़कर, माता पिता के पति के नियम को तोड़कर भाग जाती है जंगल में. हाउ टू एक्सप्लेन हिंदी, आई डोंट नो. इट इज एक्सप्लेन हियर दैट द फ्लूट इज लाइक थंडरबोल्ट दैट ब्रेक्स टू पीसेस द माउंटेन ऑफ राधास कंपोजर ऑफ पीसफुलनेस एंड एटिकेट एंड चेस्टिटी. और गोपियां राधा से कहती हैं जब मुरली बजती है कि राधा रानी देखो तुम्हारा पतिव्रत भंग हो रहा है, ये मुरली तुम्हारे पतिव्रत को भंग कर रही है. क्योंकि राधा का विवाह अभिमन्यु से हुआ था ना, तो राधा का जो मन है वो भाग रहा है कृष्ण की ओर. चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि सारी जो गोपियां हैं ये मुरली का आवाज सुनकर बहुत उसमें उनमें जैसे कि जान आ जाती है, दे गेट एनलाइवेंड एनलाइटेंड. और ये दिव्य ध्वनि से वो भगवान के लिए बहुत प्रेम में व्याकुल हो जाती है. और विशेष बात समझने की यह है कि ये जो भगवान की दिव्य मुरली का ध्वनि है यही हरे कृष्ण महामंत्र है, ऐसे चैतन्य चरितामृत में लिखा है. मुरली का ध्वनि क्या है, भगवान के सारे ध्वनियों का सार है जो दिव्य तरीके से वो दुनिया के लिए प्रकट करते हैं. और वही द्वापर युग का, गोलोक वृंदावन का जो सार है वो कलयुग में वो हरे कृष्ण महामंत्र बन जाता है, भगवान के प्रेम को वितरित करता है. इसलिए कल हमने बताया था कि जब भगवान का नाम का जब कीर्तन करते हैं तो रास लीला में जो आनंद आता है वो आनंद प्राप्त होता है. वही मुरली का सार भी वही है, जो दिव्य सबसे दिव्योत्तम आनंद है वो अपने आप हमारे लिए बद्ध जीवों के लिए प्रकट हो जाता है. तो यहाँ पर मुरली का महात्म्य तो अनंत है. यहाँ पर जब भगवान ने मुरली बजाई है, इस पहाड़ पर आकर उन्होंने मुरली बजाई तो ये पत्थर पिघलने लगा और उनके चरण चिन्ह उत्पन्न हो गए. और जैसे ही उन्होंने मुरली बजाई तो वो एक गाय भाग भाग के आई और वो पत्थर पे खड़ी हो गई. इसलिए देखो उसके ऊपर गाय के छूर के चिन्ह भी हैं. भगवान के चरण चिन्ह ऐसे हैं, लेफ्ट पूरा है, राइट आधा है, वो भी आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक से आप देखिए. फिर गाय के खूर का चिन्ह भी है, फिर लकुटी जो खड़ी करके रखे है वो गाय को हटाने के लिए, गाय को चलाने के लिए, चराने गाय गौचारण करने के लिए उसका भी चिन्ह है. और सभी जो भी खड़े हैं सबका चिन्ह आ जाता है उसके अंदर. तो सब ब्रजसुंदरियां जो हैं गोपियां वो विभल हो जाती है प्रेम से और मूर्छित हो जाती है. जो देवा देवा देवताओं की कन्याएं हैं, देवताओं की स्त्रियां हैं, देवांगना कहते हैं उनको, वो अपने विमान पर बैठकर ब्रज की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, वो विमान में बैठ के ही मोहित हो जाती है और कंप्लीटली भाव विभोर हो जाती है. और जितने प्रकार के जीव हैं, जलचर हैं, हाँ सस्तन प्राणी है, मनुष्य जीव है, सर्प है, पक्षी है, अलग प्रकार के जीव है ना, सब जीव जो है भगवान के प्रेम में पागल हो जाते हैं। और प्रेम भावना से ऐसे कहते हैं कि जो हमने वस्त्र बांध के रखे ना, यहाँ नाड़ा बांध के रखा है, यहाँ बांध के रखा है, सब ढीले हो जाते हैं प्रेम भावना से। नदियाँ स्थिर हो जाती हैं और पहाड़ पिघलने लगते हैं। इस प्रकार से वर्णन आया है चरण पहाड़ी का। ये बहुत सुंदर स्थान है। और क्या हुआ है कि जब ही मुरली बजती है तो सभी गोपियाँ जो है वो अपने पायल, अपने कलाई बंद, सभी की आवाज़ जो है मुरली के साथ साथ करने लगती हैं। दे राइम, यमक बोलते हैं उसको संस्कृत संगीत शास्त्र में। यमक का मतलब है म्यूजिक को जोड़ देना, उसी तरह से बोलना, उसी तरह से ताल देना, सुर देना, उसको यमक कहते हैं, राइमिंग। तो सभी जो है जिनके पास क्या क्या अलंकार है, किसी के पास कुंडल है, किसी के पास कंगन है, सबका ध्वनि जो है वो मुरली के तान को जोड़ देते हैं, खास करके पायल को भी, कमर पट्टे को, जितने भी ध्वनि वाले उनके पास अलंकार है सब जोड़ देते हैं उसको, और मुरली के साथ झूमते हैं हवा के झोंके की तरह। ये सब करते हुए खुद भी झूम रही है, अपने अलंकार भी बजा रही है और मुरली के तान भी सुन रही है, उसमें भाव विभोर भी हो रही है। फिर राधा रानी वीणा उठाती है, उसको बजाने लगती है और मुरली मनोहर इस वीणा के आवाज से और प्रभावित हो जाते हैं और बड़े प्रेम से मुरली बजाने लगते हैं। तो इस तरह से गोपियां कहती हैं कि जब राधा रानी को क्रोध आता है या मान करती है वो, तो अच्छे अच्छे मीठे मीठे वचन भी उसको प्रसन्न नहीं करते हैं, उनका श्रृंगार करने से भी उनको खुशी नहीं होती, उनका विनोद हास्य विनोद करने से या कोई जोक या कोई नाटिका करने से भी वो प्रसन्न नहीं होती। कृष्ण भगवान स्वयं आकर चरणों में गिर जाते हैं फिर भी वो मान नहीं छोड़ती है। और सखियां उनको कुछ कुछ अपशब्द बोलती, क्या तुम मान करके बैठी हो, इतने कृष्ण भगवान नंद गांव सज धज के आए हैं, आपको विनती कर रहे हैं, ऐसे कठोर शब्द बोलते हैं, फिर भी वो मान नहीं छोड़ती है। लेकिन जब मुरली बजाते हैं तो सब मान को भूल जाती है, सब मान गायब हो जाता है अपने आप, वो चाहते हुए मान को रख नहीं सकती है, मान नष्ट हो जाता है और खुश हो जाती है। तो इस तरह से जब यहाँ उन्होंने मुरली बजाई है तो सब गोपियाँ इकट्ठा हुई है, उनके पीछे पीछे भाग के आई हुई, फिर उनको भगवान ने नंदगांव और बरसाना के पहाड़ियों में जाकर रासलीला रचाया है। और जब रासलीला रचाया भगवान ने, आप जानते हैं भगवान ने अनेक रूप धारण किए थे, एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण थे, तो हरे को लग रहा था कि मैं कितनी स्पेशल हूँ, मेरे साथ ही देखो अकेले सबको छोड़ के नाच कर रहे हैं, मग्न तो है, उनको नजर नहीं आ रहा है कि बाकी के साथ में कौन है, नहीं तो उनको खाली दिखाई पड़ रहा है कि मेरे ही साथ कृष्ण है, तो उनको गर्व हो जाता है, तो भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, राज से गायब हो जाते हैं, राधा रानी को लेकर गायब हो जाते हैं। और फिर गोपियां व्याकुल होकर पेड़ों से, पौधों से, पत्थरों से, वनों से सबको पूछने लगती है, राधा और कृष्ण कहाँ हैं, हमारे प्राणनाथ कहाँ हैं, हे वृक्षों, हे वेलियों, बताओ हमारे प्राणनाथ कहाँ हैं। और ऐसे पुकारते पुकारते कृष्ण कृष्ण पुकारते हैं और वो कृष्णमय हो जाते हैं। फिर वो यहाँ आते हैं, दोबारा आते हैं ढूंढते ढूंढते, और इन चरण चिन्हों को देख के फिर भाव विवल हो जाते हैं और फिर चरण चिन्हों की पूजा करते हैं, दे वर्शिप द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। तो उन चरण चिन्हों के अंदर उनको कृष्ण का दर्शन होता है, लेकिन कृष्ण का दर्शन वास्तव में नहीं हो रहा है, उसके चरणों के अंदर दर्शन हो रहा है। फिर चरण चिन्ह का वो आश्रय लेती हैं और आगे बढ़ती हैं। इस बीच में क्या होता है, जब गोपियां व्याकुल होकर चरण चिन्हों की पूजा कर रही हैं, पेड़ों को पूछ रही हैं, तो उसमें राधा रानी को लेकर कृष्ण भगवान संकेत वट जाते हैं, जो बरसाना नंदगांव के बीच में है, वहां पर राधा रानी के बालों का श्रृंगार कृष्ण भगवान करते हैं। कृष्ण भगवान के बालों को सुंदर घुंघराले बनाते राधा रानी, अपने एक्सपर्ट जो स्किल है उनकी कुशलता है, कृष्ण भगवान के बालों को कंधों पर बहाते हुए, गालों पर बहाते हुए बहुत सुंदर घुंघराले बना देती हैं, उसमें अलंकार पहना देती हैं। उन्होंने परस्पर श्रृंगार किया है, भगवान के चेहरे पर राधा रानी पत्रावली की रचना करती हैं। फिर भद्रवन, बेलवन, खदीरवन, कोकिलवन, ये सब जगह को अकेले राधा रानी को लेकर विहार करते हैं। राधा रानी थक जाती हैं, सब जगह घूमते हैं, फिर गोपियाँ खोजते खोजते हुए आती हैं और उनको देखती हैं कि फिर भगवान के चरण पुण्य देखते हैं। और फिर जब वो राधा रानी को मिलते हैं, कोकिलावन में मिलते हैं आखिर में, इतना वन में विहार किया, गोपियां सब बाकी ढूंढ रहे हैं किधर है किधर है किधर है, और वो एक वन के बाद एक वन के बाद उसे वन में जा रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तब उनको समझ में आता है, क्योंकि वो भगवान के चरण चिन्ह को देखते देखते ढूंढ रही है कहाँ गए हैं। हर समय उनको दो जोड़ियां चरण कमल दिखाई पड़ते हैं, तो समझते हैं कि वो सबसे प्रिय सखी जो उनकी है राधा रानी, उसको लेकर वो गए हैं। आगे जाकर उनको एक ही जोड़ी चरण चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, ओनली वन पेयर ऑफ लोटस फीट, लेकिन गहरे गहरे दिखाई पड़ते हैं। तो वो समझते हैं कि अभी इन्होंने राधा रानी को अपने कंधे पर उठा लिया है और एक ही चरण चिन्ह चल रहे हैं, जोड़ी दो थे वो एक ही हो गए। कितना प्रेम करते हैं भगवान राधा रानी पर, वो थक गए तो उनको चरण के अंदर भी बिठा के चला रहे हैं। सब गोपियां देख रही हैं और बातें कर रहे हैं, देखो यहाँ पर केवल एक ही जोड़ी है और गहरी गहरी है, इसका मतलब ये हुआ कि राधा रानी को भगवान ने कंधे पर उठा लिया है। फिर वो कोकिल में बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हैं। उस समय गोपियों का कोलाहल सुनते हैं, वो गोपियां रो भी रही हैं, बात भी कर रही हैं, पुकार रही हैं कृष्ण कृष्ण। तो राधा रानी और कृष्ण भगवान सुनते हैं कि गोपियां आ रही हैं, चलो यहां से चलना चाहिए। तो राधा रानी कहती है कि मैं थक गई हूं। तो कहते चलो चलो चलो, देर हो रही है, सब आ गए, आ जाएंगे तो हमारा एकांत खत्म हो जाएगा। तो फिर राधा रानी चलने में इनकार कर देती है। तो भगवान कहते चलो कोई कोई बात नहीं, कंधे पर बैठ जाओ। और जो कंधे पर बैठने के लिए जब उठती है तो भगवान गायब हो जाते हैं, राधा रानी अकेली हो जाती है, बहुत दुख करती है। अरे वो कह रहे थे कि चलो, तो मैंने मान करके थकने का बहाना करके चलने से इनकार कर दिया। तो अकेले हो जाते हैं, कृष्ण भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। तो राधा रानी रोने लगती है, तब वहां गोपियां पहुंच जाती है। तो राधा रानी को दुखी देखते हुए गोपियां जो है, देखो कैसा सुंदर वर्णन आता है, गोपियां उनको जो फूलों के अंदर होता है ना मकरंद यानी कि हनी, उससे उनको नहलाती है, फूलों का रस जो है इत्र जो है उससे उनको नहलाती है, उनको बहलाने के लिए उस पर सुगंधित द्रव्य छिड़कती है, चंदन अगुरु कस्तूरी केसर इनके दिव्य सुगंधित जल से उनको स्नान कराती है, चामर से हवा देती है, अनुनय विनय करती है, उनके लिए मीठे मीठे वचन बोलती है जो उनको प्रसन्न करे मन को, उनके हृदय की अग्नि को शांत करे। राधा रानी भी, कृष्ण ने उनको कितना सम्मान दिया, अकेले में कहाँ कहाँ ले गए, उसका श्रृंगार किया, उनको वस्त्र धारण किए, फूल पहनाए, बालों को सवारा, हाथ में हाथ लेकर घुमाया, कंधे पर लेकर घुमाया, सबका वर्णन करती है कि भगवान ने हमको कितना सम्मान दिया। फिर सब गोपियों ने मिलकर राधा रानी के साथ में कृष्ण भगवान को पुकारा, उनकी प्रार्थना किया। और क्या प्रार्थना करते हो, कि आकाश में चंद्रमा है, उनके शीतल किरण सब जगह फैल रहे हैं, लेकिन वो शीतल किरण हमें अग्नि की तरह महसूस हो रहे हैं, जला रहे हैं वो चांद के शीतल किरण, जो कोमल कोमल हवा बह रही है वो हमको कांटों की तरह चुभ रही है आपके बिना। और सीता देवी को भगवान के विरह में जितना दुख हुआ था उसके करोड़ों गुना दुख हम भोग रहे हैं आपसे विरह होकर, ऐसे बता रही है। तो वातावरण कितना भी सुंदर होगा, अगर मन में दुख है तो सब कुछ दुखी नजर आता है। चंद्रमा शीतल है फिर भी गर्म नजर आता है, सुंदर हवा बह रही तो भी वो कांटों की तरह चुभती है। इस तरह से गोपियों का विरह का वर्णन आता है। तो इनकी प्रार्थना नम्रता सुनकर भगवान जो है दर्शन देते हैं, दोबारा मुरली बजाते हैं और सब गोपियों को लेकर नृत्य करने लगते हैं। नृत्य करने के बाद सबका विरह शांत होता है, सब खुश हो जाते हैं। तब गोपियां पूछते हैं आप कहाँ गए थे हमको छोड़कर, राधा को भी छोड़कर कहाँ गए थे। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं श्वेत द्वीप में गया था, वहां पर हंस मुनि तपस्या कर रहे थे, दो मनवंतर यानी कि 71 युगों तक, 71 कल्पों तक इंटू टू 142 कल्प यानी 142 बार चार युग का समय बीतता है, तब तक वो तपस्या कर रहे थे हंस मुनि। तो आधे योजन लंबे राक्षस ने मत्स्य का रूप धारण किया और उसको निगल गए वो। एक और बड़ा राक्षस आया, उससे भी बड़ा मत्स्य का रूप धारण करके उसने वो मत्स्य को भी निगल लिया जिसके अंदर हंस मुनि थे। तो हंस मुनि की अवस्था बहुत बिकट हो गई, मेरे भक्त हैं वो, पुकार रहे हैं मुझे, दो मछलियों के पेट में अंदर है वो एक के ऊपर एक, और तपस्या करने के लिए बैठे थे श्वेत द्वीप पे, मुझे पुकार रहे हैं। तो जब मैं आपको कह रहा था कि आप मेरे कंधे पर बैठो तब उनकी पुकार सुनाई पड़ी, भक्त मुझे पुकार रहे तो मैं रुक नहीं सका, तो आपको छोड़ के मैं चला गया सोचा द्वीप में। वहां पर मेरे चक्र से दोनों मछलियों को काट करके मुक्त हंस मुनि को मैंने मुक्त किया। फिर तभी वो श्वेत द्वीप, मैंने बताया ना शेर सागर के अंदर श्वेत द्वीप है, तो थोड़ा मैं थक गया तो मैं वहां पर नागशया पे लेट गया। नागशया पे लेटा तो आपकी पुकार सुनी, आप रो रहे हैं, तो वहां से उठ के नींद छोड़कर भाग के आया आपको दर्शन देने के लिए। कैसे भगवान ने देखो हमारे, नहीं प्रेम प्रेम और प्रेम, नथिंग एल्स। जहां पर भक्त पुकारता है वहां भाग के चले जाते हैं, अपनी नींद अपना आनंद अपना भूख प्यास सब छोड़ देते हैं, अपना आनंद जो है सब सुख छोड़ देते हैं। शेष शया पर लेट रहे हैं वहां पर आराम से, कारण सागर में, गर्भोदक सागर में। जब यहां गोपियों की आवाज सुनी तुरंत दो नींद छोड़ के वापस भाग के आए। और इस तरह से जब भी उन्होंने कहा कैसे ऐसे हुआ, तो गोपियों ने कहा कि हमें आपका वो रूप दिखा दो जिस रूप में आप सो रहे थे शेष शैया के ऊपर। तो भगवान ने ब्रज में उनकी आंखों के सामने शेष शैया पर चतुर्भुज विष्णु का स्वरूप दिखाया, उनको समुद्र को प्रकट किया। वही वो जगह थी जहां पर हम लोग प्रसाद पाए ना, शेर सागर। इस तरह से भगवान ने श्वेत द्वीप जो है उसको भी पृथ्वी पर, वैकुंठ मतलब वैकुंठ को यहाँ पर ब्रज वृंदावन में प्रकट किया। और राधा रानी उसमें लक्ष्मी बनी हुई थी और कृष्ण भगवान विष्णु बने हुए थे, और राधा रानी लक्ष्मी बनकर भगवान के चरणों को दबा रही थी, ये दर्शन उन्होंने दिया। तो ये सब लीला हुई यहाँ पर, बहुत सुंदर लीला है। और यहाँ पे आगे आपको दिखाएंगे लुकलुक कुंड है, वो लुकलुक कुंड की लीला भी ऐसी है बहुत सुंदर। आँख में चोली होती है यहाँ पर, ग्वाल बाल भी एक दूसरे की आँख बंद करके छुआछूत को खेल खेलते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, लपा छपी खेलते हैं, किसी की आंखों को बांध देते हैं, फिर दूसरे को छूना होता है, जिसको छू लेते हैं उसको उसकी आँख बंद कर लेते हैं, बाकी सब लोग उसको मजाक करके उसको भगा देते हैं, आवाज़ करते हैं, उसको छूने का प्रयास करता है फिर भागता है। इस प्रकार से लुका छुपी का खेल होता है। तो उसमें एक लीला ऐसी है लुका छुपी की कि ये तो सखा लोग खेलते रहते हैं आँख को बांध कर, सखियों के साथ भी भगवान खेलते हैं गोपियों के साथ। तो लुकलुक कुंड जो है उसको लुका छुपी कुंड भी खेलते कहते हैं। अभी वो तो थोड़ा लुप्त हो रहा है, थोड़ा सा उसको उद्धार भी होने वाला है। तो सखियाँ आप जल में प्रवेश करती हैं और कृष्ण भी जल में प्रवेश करते हैं, और कंपटीशन क्या है उनकी कि जो व्यक्ति सबसे अधिक समय जल के अंदर रहेगा वो जीत जाएगा। दे हैव टू गो अंडर वाटर एंड हूएवर विल स्टे अंडर वाटर फॉर लॉन्ग टाइम दे विल बी विनर। तो कृष्ण भगवान चले जाते हैं पानी के नीचे, तो गोपियां बड़ी चालाक हैं, वो क्या करते हैं जब कृष्ण भगवान पानी के नीचे है खुद पानी के ऊपर आ जाती है, जब वो ऊपर आने का चिन्ह लगता है तो खुद नीचे चली जाती है, ताकि वो जब ऊपर आने का प्रयास कर रहे हैं तभी तुरंत नीचे चली जाती है, और एंड में बोलते कि हम जीत गए। ऐसे भगवान कई बार चीट करते हैं, तो भगवान समझते हैं कि ये जीतने के लिए जब मैं नीचे रहता हूँ तब ये खुद ऊपर आके सांस लेती है, और जब मैं ऊपर आता हूँ तो ये नीचे चली जाती है, और कहते देखो हम तो नीचे ही आप ऊपर आ गए अब हार गए। तो भगवान क्या करते हैं, एक बार बहुत बार ऐसे होता है वो चीटिंग करके जीत जाती है, तो ये अगली बार जो जल के अंदर चले जाते जल के अंदर बाहर ही नहीं आते और कहीं दिखाई नहीं पड़ते, कहाँ गए मालूम नहीं है। तब सब गोपियां पछताती है, अरे हमने उनको चीटिंग किया, देखो अभी वो अंतर्धान हो गए, दर्शन नहीं दे रहे, पता नहीं जल में डूब गए कहाँ गए, सब ढूंढ रहे इधर पानी में जा रहे हैं, तैर रही है नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रही है, कहीं नजर नहीं आ रहे उनको। फिर बाहर आके बहुत रोती है, हे भगवान हमको माफ कीजिए, हमने आपके साथ छल किया, हाँ सरल हृदय से आपके साथ में खेला नहीं, हम लोग ने छल करके आपको हराना चाहा, माफ कर दीजिए, आप हमारे प्राण प्रियतम हैं, दर्शन दीजिए। तो जब वो छल कपट की भावना से मुक्त हो जाते हैं और सरल हृदय की भावना में आते हैं तो फिर दोबारा वो प्रकट हो जाते हैं। छल कपट करना भगवान को पसंद नहीं है, हाँ वी कैन नॉट चीट द लॉर्ड, वो तो सबसे बड़े छलिया हैं, है ना, छलियों के भी छलियोत्तम है वो। जो छला छल करते हैं उनको भी वो छल दिखाते हैं अच्छी तरह से। भगवत गीता में लिखा है कि अमंगस्ट द गैम्बलर्स आई एम द ग्रेटेस्ट गैम्बलर, वो जुवारियों में सबसे बड़े जुवारी भगवान ही है, हाँ अगर उनसे आप जुआ खेलते हो तो वो भी आपको जुआ खिलाएंगे अच्छी तरह से, अच्छा गेम खिलाएंगे आपको। हाँ भगवान से बोलते हैं ना कि सबसे आप छल कर सकते हो, भगवान से नहीं कर सकते। जब गोपियों ने प्रयास किया छल करने का तो भगवान अंतर्धान हो गए, तो पछताए बहुत वो, और पछता के छल भावना छोड़ दिया उन्होंने। तो ये भी लीला जो है लुकलुक कुंड में हुई है। बहुत सुंदर जगह है, यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लीला होती रहती है। तो आप सब लोगों को बधाई है कि आप काम्यवन में आए हैं। काम्यवन में ऐसे अद्भुत 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 घटनाएं घटती रहती हैं। काम्यवन की महात्म्य की अनंत कथाएं हैं, कहाँ तक बताएं, सोचा एक एक कथा करके बताते रहेंगे आपको। काम्यवन इतना अद्भुत वन है कि इसमें अधिकतर धाम भगवान के यहाँ विराजमान है। जैसे कि जब नंद बाबा को बालक नहीं हुआ था, नंद बाबा मन्नत मांग लिए कि जब हमारी बालक होगा तो हम चार धाम की यात्रा करेंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, यंगोत्री। तो बालक हो गया, बड़ा भी होने लगा, नंद बाबा कहते हैं मन्नत पूरी करनी चाहिए, अभी हम जा रहे हैं बद्रीनाथ को। तो कान्हा को अच्छा लगा नहीं, अरे ब्रज छोड़कर बद्रीनाथ जाएंगे आप, ये अच्छा नहीं है। तो बालक है, इसको क्या समझ में आता है मन्नत क्या होती है और कैसे मनाते हैं उसको और कैसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। बालक को क्या समझ में आएगा, हमारा कर्तव्य आपको करना चाहिए। तो निकलने लगते हैं, तो कन्हैया जी कहते हैं नहीं नहीं बाबा, आपको नहीं जाना है, आप आँख बंद कर लो, मैं उनको यही बुला लेता हूँ। तो आँख बंद कर लेते हैं ब्रजवासी लोग, यशोदा मैया, नंद महाराज, सब बड़े गोप जो हैं वो तैयारी कर चुके हैं, बैग भर के रेडी है जाने के लिए। तो आँख बंद कर लेते, कोई नुकसान नहीं है। तो आँख बंद कर लेते हैं और आँख खोलते ही उनके आंखों के सामने बद्रीनाथ, केदारनाथ, अलकनंदा और उसका पूरा लंबा लिस्ट है, मैं आपको निकालता हूँ उसको। देखो हिमालय के अंदर क्या क्या तीर्थ हैं। नंद यशोदा ने सबने आंख बंद कर लिए और आंख खोल दिए तो उनके सामने क्या क्या प्रकट हुआ देखो। गंगोत्री, जमुनोत्री, नर नारायण ऋषि, अलकनंदा नदी, हर की पौड़ी, स्वर्ग आश्रम, देव सरोवर, चंदन वन, गंधमादन पर्वत, केशराचल पर्वत, धवलगिरी पर्वत, नर नारायण पर्वत, चित्रकूट पर्वत, विंध्याचल पर्वत, रोहिताचल पर्वत, मेनका पर्वत, द्रोणगिरी पर्वत, नील घाटी, सुगंधी शिला, सौगंधिका, मान सरोवर, मालती बन, मायादेव, गया कुंड, जो गौरी कुंड, उद्धव कुंड, कृष्ण कुंड, श्याम कुंड, सिंह गुफा आदि समस्त तीर्थों ने दर्शन दिया बाबा को। बाबा ने उनमें स्नान किया। आज भी आप जाएंगे तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री सब विराजमान है। यहाँ से केवल 25 किलोमीटर दूर है, वहां आप जाएंगे आप। नो, व्हेन ही ओपन्ड हिज आईज, ही वाज देयर, राइट देयर, बिकॉज दे हैव अपीयर्ड देयर, वेयर एवर ही वाज स्टैंडिंग देयर, ही ओपन्ड हिज आईज एंड ऑल ऑफ देम वर देयर, सो ऑल धाम दे गॉट एस्टैब्लिश्ड ओवर देयर, सब धाम ने वहां पर आश्रय ले लिया। और उसी एक क्षण में आँख खोलते ही नंद बाबा ने, ग्वाल बालों ने, गोपियों ने, सभी यशोदा मैया ने आपके आँखों के सामने सबका दर्शन किया। सभी तीर्थों गए वो, नर नारायण ऋषि में गए, अलकनंदा नदी में गए, जमुनोत्री गए, गंगोत्री गए, सब उन्होंने स्नान किया वहाँ पर और अपने मन्नत को पूरा कर दिया। इस तरह से भगवान ने यहाँ पर काम्यवन में चरण काम्यवन में चार धाम को प्रकट किया है। जप मत करना आप जब सुनते हुए, और कई धामों को प्रकट किया है। आगे जाकर पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं दर्शन करने के लिए। थोड़ा आगे जाएंगे यहाँ से तो गया कुंड है, लोग गया जाते हैं ना, गया वाराणसी के पास, वहाँ पर बहुत पवित्र तीर्थ स्थान है। वहाँ पर अगर हमारे अंत संस्कार होता है या श्राद्ध होता है तो वो उसका मोक्ष हो जाता है, लेकिन वो गया कुंड उन्होंने यहाँ प्रकट किया है। और उसका महात्म्य क्या है, केवल मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है इस गया कुंड में जाने से, केवल वहां जाने से जितने भी आपके पुरखे हैं जो गुजर चुके हैं वो सबका गोलोक धाम में उद्धार हो जाता है। केवल आपको वहां जाकर उनकी याद करनी है कि मेरे मम्मी की मम्मी गई, मम्मी के पिताजी गए, और पिताजी की मम्मी, पिताजी के पिताजी, और मामा और चाचा और काका जो भी गुजर गए हैं, बड़ी बहन, छोटी बहन जो भी गुजर गए हैं, केवल आपको वहां खड़े होकर उनकी याद करनी है। तर्पण भी करने की जरूरत नहीं है। गया में जाएंगे तो वहां पर तर्पण करना पड़ेगा, सब श्राद्ध कर्म करना पड़ेगा, बहुत सारे क्रिया कर्म विधि कर्म कांड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ के गया कुंड में जाएंगे तो उससे भी ऊपर की प्राप्ति होगी। और न केवल आपकी, आपके लिए जितने भी आपके पूर्वज हैं सब गुजर चुके हैं, सबका उद्धार हो जाएगा केवल आने मात्र से। जैसे कि यहाँ का चरण पहाड़ी या चार धाम का क्या महात्म्य है, ओरिजिनल चार धाम जो है जो जहाँ विराजमान है वहां जाने के लिए आपको कितना कष्ट है, यहां से हरिद्वार जाओ, वहां से हिमालय में जाओ। पुराने जमाने में चल के जाया करते थे, लोग मरते भी थे, पहुंचते भी नहीं थे वहां पर। कुछ लोग वापस लौट के आते हैं तो उनकी पूजा करते थे लोग, अरे कितने महान लोग हैं, चार धाम की यात्रा पैदल करके वापस भी लौट के आए। इतना कठिन था वो काम, ऊपर से हवा कम रहती है, ऑक्सीजन कम रहता है वहां पर, इतना दबाव, इतना कष्ट होता है सांस लेने में, और कितना ठंडा बर्फ जैसा पानी होता है, खाली वो बह रहा है इसलिए वो पानी है, रुक जाएगा तो बर्फ बन जाएगा, इतना ठंडा है वहां पर, सब जगह बर्फ है, यात्रा करना बहुत मुश्किल है। कितनी ऊंची पहाड़ी है, हजारों किलोमीटर आकाश में है वो सब, नर नारायण पर्वत और कितने कितने चोटियां हैं, जाने के लिए कितना कष्ट है, लेकिन यहां पर छोटे कद के हो जाते हैं वो, बड़ी आसानी से उनको हम पार कर सकते हैं। उतना सारा कष्ट करने की जरूरत नहीं जहां पर जाने का लगता है, थोड़े से कष्ट में पूरे चार धाम की यात्रा होती है, और चार धाम में जो महात्म्य है, जो भी लाभ होता है, उससे ऊपर जाकर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति यहां पर चार धाम का दर्शन करने से होती है। दैट इज अ बेनिफिट, समझने की कोशिश करो। जितने धाम है वो सबका लाभ एक एक लल एक एक स्तर पे है, एक एक लेवल पे है, लेकिन वही धाम जब वृंदावन धाम में काम्यवन में प्रकट होते हैं तो इस धाम का जो परम तत्व है, परम स्थिति है, उसका मौका उनको भी मिलता है, और उनका महात्म्य जो उनकी जगह पर है उससे कई हजारों गुना बढ़ जाता है उनका महात्म्य, और वो जो कृपा करते हैं वहां पहुंचने के बाद में उससे करोड़ों गुना अधिक कृपा यहां पर जब उनको मिलते हैं तो वो कर देते हैं, क्योंकि वो धाम जो है व्यक्ति है उनको भी ब्रज के संघ का लाभ मिलता है और उनका महात्म्य भी ब्रज के संघ का लाभ होने से बढ़ जाता है। इसलिए बुद्धिमानी की का क्या तरीका है, इतना दूर मत जाओ, खाली ब्रज में आओ, सब तीर्थों का ये दर्शन यही करो, साथ साथ में उसका दुगना और चौगुना और हजार गुना लाभ जी है लाभ है वो भी प्राप्त करो। दिस इज दी मर्सी ऑफ ब्रज भूमि। एक बार क्या हुआ, गोपियां भगवान के साथ खेल रही थी, तो खेल खेल में उनकी बात चली, वार्तालाप भी करते हैं, विनोद भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, मजाक भी कर लेते हैं कभी भगवान को, कभी चिढ़ाते भी हैं, तो बात बात में कह दिया उन्होंने, कह रहे हमने सुना था कि राम भगवान ने धनुष लेकर, थोड़ा बाद में लगाना भाई साहब, थोड़ा सा थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, तो भगवान रामचंद्र ने इतना पराक्रम किया था, इतने भयंकर रावण कुंभकर्ण सबको वध कर दिया उन्होंने, और हमने सुना था, कभी कभी सुनते हम कि वो आप ही थे, पिछले जन्म में रावण को मारने वाले रामचंद्र आप ही थे, आप ही वो नरसिंह भगवान भी थे, हमने सुना है हिरण्यकश्यप का वध भी आपने किया था। तो वह संकोच से बोलते हैं, नहीं 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 मैं तो नहीं था, वो तो आप गलत सुन रहे हैं, आपको पता नहीं है सब, ये मैं कुछ नहीं हूं, नहीं 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 आप है हम जानते हैं, आपको वो रूप दिखाना ही पड़ेगा हमको अभी, तो नहीं कहते हैं, बोले आप अगर नहीं दिखाएंगे तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे, कभी मिलने को नहीं आएंगे। अरे मिलने को नहीं आएंगे तो कैसा होगा मेरा, कोई बात नहीं आप आंख बंद कर लो। अब बोलते आंख खोलो तो बलराम जी लक्ष्मण बने हुए और कृष्ण भगवान राम बनकर धनुष बाण धारण करके खड़े हैं, सारे ग्वाल बाल बंदर बने हुए हैं। अचानक समुद्र उत्पन्न होता है वहां पर, बहुत जोरदार पानी उत्पन्न होता है और सब बानर बने हुए ग्वाल बाल पूछ रहे हैं इससे पार करके कहां कैसे जाएं सीता जी को लाने के लिए, कोई बात नहीं हम सेतु बनाएंगे। हाँ तब रामचंद्र भगवान को 7 दिन लगे थे, दिन रात मेहनत करते हुए 7 क्षणों में उन्होंने ब्रिज बांध दिया यहाँ पर, और उधर अचानक उस जगह से रावण प्रकट हो गया, 10 सर वाला, ललकार रहा है राम को, कहाँ है राम, अभी तुमका वध कर देता हूं। तो सबके सामने, गोपियों के सामने कृष्ण भगवान राम बने हुए हैं, धनुष धारण किए हुए हैं और रावण का तत्क्षण वध कर देते हैं। रामायण में ये सब लीला को बहुत समय लगा, यहाँ पर कुछ पलों में सब लीला खत्म हो गया, सब आत्मे आखेम हो गया, भगवान ने शंकर के लिंग को भी स्थापित किया, रामेश्वर धाम प्रकट किया, उधर रामेश्वर से सेतु बंधन चालू किया, हाँ समुद्र का उत्पत्ति हुई, लंका में प्रवेश किया, रावण का वध किया, सब कुछ दिखा दिया, फिर बोला आग बंद करो, फिर आग बंद कर दिया, फिर सामने खड़े, लेकिन रामेश्वर वही रह गया, सेतु बंद भी वही रह गया, श्रीलंका भी वही रह गई। इस प्रकार से रामेश्वर, सेतुबंध और श्रीलंका को उन्होंने यहां प्रकट किया। एक जगह ऐसा वर्णन भी आता है, कल्प भेद यानी अलग अलग कल्प के लीला के अनुसार, कि भगवान ही उनको बता रहे थे, मतलब कभी कभी ना वो अपना दिखाते हैं गोपियों को मैं कितना महान हूं, कभी कभी छुपा देते हैं, मतलब आप जानते नहीं है मैं राम था, मैं नरसिंह भगवान था, अरे है तो ग्वाला है, तो कोई तरीका मालूम नहीं, कुछ नहीं गए, बना चला बना राम बनने के लिए, तो नहीं नहीं मैं था, मैंने नरसिंह बनकर हिरण्यकश्यप का वध किया था, मैं ही वराह बनकर हिरण्याक्ष का वध किया था, मैं ही हूँ मत्स्य बनकर वेदों का रक्षण किया था। तो लोग जोर से हंसने लगते हैं, उनको मजाक करने लगते हैं, दिस आर रिडिक्यूलिंग हिम। बोले आपको देखना है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, देखते हैं कितना दिखाते हो। तो उनकी आंखों के सामने राम बन गए, सब ग्वाल वालों को बंदर बना दिया, बलराम जी लक्ष्मण बन गए, रावण को प्रकट किया और वध कर दिया उन्होंने। हाँ, दोनों लीलाएं सत्य हैं, अलग अलग समय पर अलग लीला करते हैं, अलग अलग वैरायटी के साथ में करते हैं। तो सीता सेतुबंध प्रकट किया है, गया को प्रकट किया, चार धाम को प्रकट किया, क्या प्रकट नहीं किया यहाँ पर। हाँ, और आगे की कथा आगे बताएंगे, ये सब काम्यवन का महात्म्य में आता है। वराह भगवान पृथ्वीदेवी को बता रहे हैं, ये सब महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ है काम्यवन में, भगवान को अति प्रिय वन है ये। बोलो चरण पहाड़ी धाम की
जय,
चार धाम की
जय,
गया कुंड की
जय,
सेतु बंद की
जय,
रामेश्वर की
जय,
श्रीलंका की
जय,
श्री कृष्ण भगवान की
जय,
उनके मुरली वादन की
जय,
उनके बंसुरी की
जय,
उनके वेणु की
जय,
हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।